Jai Kripadu. So we are ready for the last session of understanding Sayamkalin Devandan. मैंने इसके अंदर स्टार्टिंग में वापस थोड़े एडिशंस किए हैं जस्ट टू मेक इट क्लियर कि इसकी जो भी हर श्लोक्स हैं गाथाएं हैं वो कहाँ से ली हुई है. तो ये छोटा सा एडिशन किया है. ऑल्दो हमें पता है कि इसकी सारी गाथाएं श्लोक आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन के प्रमुख शास्त्रों से ली है और आत्मसिद्धि को तो आना ही था बिकॉज कंपाइलेशन इज डन बाय लघुराज स्वामी एंड ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी गोवर्धन जी. पहले दो श्लोक किसने लिखे हैं? अम्बालाल भाई द्वारा रचित. तीसरा श्लोक शिव षडक्षर स्तोत्र जो है उसका है. कौन सा? ओमकारम बिंदु संयुक्तम. शिव षडक्षर स्तोत्र एक है. शिव को मानने वाले एक ही मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय. छह अक्षर है ना, ओम नमो शिवाय. छ हो गए, छ अक्षर. हाँ, अल्फाबेट्स. हाँ, अक्षर ही बोलेंगे क्योंकि वो तो शब्द होते हैं. तो छ अक्षर हैं तो उसके ऊपर सेवन श्लोक्स हैं. तो उसका पहला श्लोक है क्योंकि ओम है ना पहला वर्ड उस मंत्र का, तो उस ओम के ऊपर ही ये श्लोक है. ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः. फिर उसका दूसरा श्लोक जो है वो शिव से है, श से है. तीसरा व से है. चौथा न से. इस तरह से पूरा चलता है. लेकिन लघुराज स्वामी ने पहला श्लोक लिया क्योंकि वो जानते थे कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब कोई कृपाणु देव को समझेगा तो उसमें आस्तिक दर्शन आए बिना रह ही नहीं सकता. इतनी सूझबूझ थी उन लोगों को कि जब कोई आध्यात्मिक दर्शन से समझेगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो आस्तिक दर्शन आएगा. और आस्तिक दर्शन आएगा तो आस्तिक दर्शन के कुछ श्लोक कुछ सूत्र वो भी तो होने चाहिए इसके अंदर. तो उन्होंने पहला लिया आस्तिक दर्शन से शिव षडक्षर स्तोत्रम का पहला श्लोक. फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो छः श्लोक है ये है जैन शास्त्रों से अलग अलग. एज आई सेड के घर पर जो मेरी डायरी है उसमें लिखा होगा कि कौन से कहाँ से हैं, बट यहाँ हम लोग खाली ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग रखते हैं. श्लोक 10 to 19 तक हैं सारे गुरु गीता से, बट रैंडमली उठाए हुए हैं. फिर 20 से 26 आत्मसिद्धि शास्त्र से और 27 वापस गुरु गीता का है. इसके विधि के लिए हम बात कर चुके हैं कि चित्रपट के सामने ज्योत जलाकर करने का समय 7 से 9 बजे तक का. आगे बढ़ते हैं. ये सारे पता है, रिकैप करने हैं क्या? आई थिंक वी ऑल नो. ये गुरु गीता वाले ही श्लोक चल रहे थे, उस चल रहे हैं. उसके अंदर वो 5 हो गए ना, गुरु ब्रह्मा वगैरह जो हम गाते हैं. उसके बाद अब ये आता है, ये भी उसमें से ही है, गाते हैं हम लोग.
देवेशु देवोस्तु निरंजनो मे गुरु गुरुष्वस्तु दमीशमीमे धर्मेशु धर्मोस्तु दयापरो मे त्रिकेव तत्वानि भवे भवे मे.
17th श्लोक जो हमने किया था ना उसके अंदर शिष्य में परमार्थ साधन प्रकट होते हैं, हमने ये बात देखी थी, याद है? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल अप करना पार्थ. 17th श्लोक के अंदर हमने देखा था परमार्थ साधन प्रकट होते हैं. कौन से? ध्यान रूपी धूप, मन पुष्प जैसा हो जाता है, पंच इंद्रियों का नशा उतरता है, क्षमा सतत चलती है, संतोष पूज्य हो जाता है और इसलिए फिर वो निरंजन देव को नमस्कार करते हैं. अब उसे अच्छी तरह पता है कि ये सब कुछ मेरे को परमार्थ साधन जो मिले हैं वो किसके बलबूते पर मिले हैं, कैसे मिले मुझे? सदगुरु मिले, सदगुरु मिले. उन्होंने राइट देव का मीनिंग समझाया, ईश्वर का कहो भगवान का कहो, और राइट धर्म का भी मीनिंग समझाया. तो देव गुरु और धर्म इन तीनों की जहाँ क्लबिंग हुई तभी तो मुझे पता चला मुझे करना के इस बात पर. आस्तिक दर्शन से देव किसको कहते हैं? आस्तिक दर्शन से देव किसको बोलेंगे? ईश्वर, ईश्वर को. और नास्तिक दर्शन से देव किसको बोलते हैं? हाँ भगवान को। देखो देव वर्ड एक ही है, दिव्यता, लेकिन आस्तिक दर्शन में देव हम ईश्वर को बोलते हैं और नास्तिक दर्शन में हम देव भगवान को बोलते हैं। उनकी जब करेक्टरिस्टिक्स की बात हो तो हम कह सकते हैं नास्तिक दर्शन में देव की रिकग्निशन होती है उनके ज्ञान से, और आस्तिक दर्शन में उनकी रिकग्निशन होती है ऊर्जा से, शक्ति से। ये डिफरेंट बहुत सारे डायमेंशंस है, ये क्लैरिटी हमेशा मन में रखनी पड़ेगी कि दोनों दर्शन अलग अलग चीज़ों को पॉइंट करके बात कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो शिष्य भरा हुआ है उसको बिल्कुल पता है कि गुरु तत्व मेरे जीवन में आए तभी उन्होंने मुझे देव का स्वरूप समझाया, चाहे आस्तिक दर्शन हो चाहे नास्तिक दर्शन हो, और तभी मुझे धर्म पता चला कि मुझे करना क्या है। तो वो इस श्लोक में रिक्वेस्ट करता है कि ये तीनों तत्व मुझे हर जन्म में मिले। खाली भगवान मिल जाए पर उन भगवान का स्वरूप समझाने वाले गुरु ही ना मिले तो क्या फ़ायदा। गुरु मिल जाए लेकिन गुरु तुम्हें धर्म का मैसेज ही तुम्हारे अंदर डाल ना पाए तो क्या फ़ायदा। तुम्हें धर्म पता हो लेकिन क्यों धर्म करना है उसका एम ही ना पता हो तो भी क्या फ़ायदा। सो इस श्लोक के अंदर बताते हैं कि ये तीन तत्व कौन, देव गुरु और धर्म, मुझे हर जन्म में चाहिए। हर जन्म यानी जितने भी भाव बाकी है उसमें। ईश्वर से तीन प्रार्थनाएं, भगवान से नहीं कर सकते प्रार्थना? हूँ, मैंने क्यों ईश्वर लिख दिया गलती? भगवान हमारे मार्गदर्शक है, ईश्वर हमारे पालक है, ठीक है। एक गार्जियन है एक गाइड है, फर्क है। हम गार्जियन से मांग सकते हैं ये दे दो वो दे दो, लेकिन हम गाइड से नहीं मांग सकते। गाइड से खाली गाइडेंस मांग सकते हैं, नॉट एनीथिंग एल्स। लेकिन अब ये जीवन के तीन महत्वपूर्ण तत्व चाहिए जीवन में, तो जो सर्वव्यापक शक्ति है उसी से तो मांगेंगे। तो इसलिए कहा देवेशु देवोस्तु निरंजनों में। देवेशु यानी इष्ट देव, देवोस्तु यानी देव है, निरंजन अनंत ईश्वर आस्तिक दर्शन से, अथवा मलिनता रहित यानी नास्तिक दर्शन से, ठीक है। देव मलिनता रहित यानी वितराग परमात्मा भी लिख सकते हैं हम। निरंजन, निरंजन वर्ड का मीनिंग पता है? हाँ, अगेन दोनों दृष्टिकोण लेने पड़ेंगे। जन्म मरण का कलंक नहीं है वो भी निरंजन है, वो नास्तिक दर्शन से। लेकिन जो आंखों से देखा नहीं जा सकता वो आस्तिक दर्शन से। निरंजन जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, अदृश्य ईश्वर, तो आस्तिक दर्शन से निरंजन का ये मीनिंग होता है, और नास्तिक दर्शन से ये मीनिंग लेते हैं। ऑल्दो निरंजन का जो ज़्यादा पॉपुलर वर्जन है वो यही है कि जो कलंक रहित है, लेकिन ईश्वर तो भाई पूरे में समाया है, तो इसलिए हम उनके लिए ये मीनिंग लेते हैं कि जो आँखों से दृश्यमान नहीं है। इष्ट देव देव है, अनंत ईश्वर नास्तिक आस्तिक दोनों दर्शन से में मतलब हो। गुरु गुरुष्वस्तु, इष्ट गुरु ऐसे हो, कैसे? दमी शमी में जोश और शांति से पूरित। जोश भी है बाहर और भीतर उनके शांति है। दम और शम बीच में एक सत्संग में समझाया भी था। धर्मेशु, इष्ट धर्म कौन सा हो? एशु एशु आ रहे हैं ना, ये सब इष्ट धातु से लिए हुए हैं। धर्मेशु धर्म कौन सा, इष्ट धर्म कौन सा हो? करुणा से भरा हुआ, दया पर हो, जिसमें करुणा हो अपनी भी और दूसरों के लिए भी। त्रिणयेव तीनों ही तत्वानी यानी तत्व हो, भवे भवे में प्रत्येक जन्म में हो। भावार्थ क्या बनता है? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले प्रत्येक जन्म में हमें देव गुरु धर्म का सानिध्य प्राप्त हो। आस्तिक दर्शन की अपेक्षा से देव ऐसे मिले जिसमें अनंत ब्रह्मांड रमण करता हो, अर्थात ईश्वर, और नास्तिक दर्शन की अपेक्षा से देव ऐसे हो जो कर्मों की मलिनता रहित पूर्ण शुद्ध हो, अर्थात वितराग भगवान। गुरु ऐसे मिले जिनमें हमें मार्ग बताने का उत्साह हो और भीतर से अचल शांत दशा में विहरते हों। धर्म ऐसा मिले जिसमें स्व पर दया की मुख्यता हो। यह तीनों तत्व हमें शेष सभी भवों में प्राप्त हो, ऐसी ही प्रार्थना। ये श्लोक मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि भगवान के सामने जाकर जब कुछ मांगना ही हो ना तो ऑलवेज यही मांगो कि देव गुरु और धर्म इन तीनों की का कॉम्बिनेशन मिले। कोई एक मिलेगा ना तो भी लाभ नहीं होगा। इसलिए इवन जब गुरु खुद भी विचरते हैं भगवान वितराग की फॉर्म में, तो उन वितराग को समझाने के लिए भी गंधर क्रिएट किए जाते हैं। वितराग को डायरेक्टली लोग समझ ही नहीं पाते, इसलिए उनको समझाने के लिए भी गंधर होते हैं। गंधर को समझाने के लिए वापस आगे उन्होंने पूरी एक सेटिंग की है, आचार्य होते हैं। आचार्यों को समझाने के लिए उपाध्याय होते हैं। उपाध्याय को भी समझाने के लिए फिर साधु संत होते हैं। मतलब समझाने यानी उनको समझने के लिए साधु, हाँ, क्या उपाध्याय की दशा को समझाने के लिए वापस अब साधु संत होंगे। तो इस तरह से पूरी हायरार्की इन लोगों ने इस्टेब्लिश की हुई है। तो यहाँ पर हम उन हायरार्की के तीन मेजर जो तत्व हैं उनकी मांग करते हैं। आगे नमस्कार आ रहा है एक और। जन्मों जन्म के सभी प्रत्यक्ष परोक्ष गुरु तत्व को अब नमस्कार कर रहे हैं।
परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः।
परात्पर दो शब्दों से बना है, पर और अपर। पर यानी चेतन और अपर यानी जड़। पर अपर दोनों गुरुओं को नमस्कार करते हैं। तुम कहोगे जड़ कैसे गुरु हो जाता है? तो पूरे जो हम श्लाका पुरुषों का वर्णन पढ़ते हैं, यानी जो पूर्व में प्राप्त हुए उन लोगों का चरित्र पढ़ते हैं, स्टोरीज, लाइफ स्टोरीज, तो हमें पता चलता है कि एक सूखा पत्ता पेड़ से गिरता है ना और उनको वैराग्य हो जाता है, तो वो सूखा पत्ता उनके लिए गुरु बन गया। आसमान में बिजली कड़कती है ना तो उनको वैराग्य होता है, इतना गहरा वैराग्य कि सीधा केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इतना गहरा। तो ये जो बिजली कड़की ये उनके लिए गुरु बन गए। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं तीर्थंकर चरित्र में, तो इतने उदाहरण मिलते हैं कि सच में क्या प्रज्ञावान जीव थे कि कोई भी प्राकृतिक घटना से बोध पा लेते थे कि एक फल गिरा और अरे कि ये तो फल ऐसे गिर जाता है, और उनको बोध हो गया कि अरे हम भी तो गिर जाएंगे। वो चूड़ियाँ खनक रही थी, उसे नमी राजा ऋषि को बोध मिला, तो वो चूड़ियाँ उसके लिए अपर गुरु बन गई। तो परात्पर गुरुवे नमः, खाली चेतन ही गुरु बनता है ऐसा नहीं है, जड़ भी गुरु बनता है। तो जब जीव के अंदर इतना नमस्कार भाव प्रकट हो गया, हम शुरू से नमस्कार ही कर रहे हैं ना, तो अब उसे याद आता है अरे खाली चेतन को क्या नमस्कार कर रहा हूँ, जड़ ने भी तो कितनी बार बोध दिया है मुझे। होता है कि नहीं? ऐसे बोध बहुत मिलते हैं। इंद्रधनुष के रंगों को देखते हैं और फिर बादल आ जाते हैं, इससे बोध कितनों ने पा लिया। तो कहते हैं कि उन सभी गुरुओं को नमस्कार करता हूँ। देखो कितना हृदय संवेदनशील हो गया ना, अभी तक तो खाली प्रत्यक्ष गुरु दिख रहे थे, फिर उसमें से आए तो परोक्ष गुरु, पीछे के गुरु, जन्मों जन्म के गुरु, अब कह रहे हैं कि चेतन गुरु को तो करा ही, जड़ गुरुओं को भी परात्पर गुरुवे नमः। बड़ी प्यारी लाइन है ये। परंपरा से हुए आचार्य उनको भी नमः, गुरुवे नमः। एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो हर जगह फिर सेम ही मीनिंग है ना। तो जो परंपरा से आचार्य हुए हैं, जैसा मैं अभी तुम्हें समझा ही रही थी कि वन बाय वन वो तुम्हें जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरह से लोगों को टीच किया है जिनके माध्यम से वापस वो बातें तुम तक आई है। सो डायरेक्टली उन्होंने तुम्हें टीच नहीं किया, बट इनडायरेक्टली परंपरा से इनडायरेक्टली उन्होंने कहीं ना कहीं तुम्हें टीच भी किया और तुम्हारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दे आर प्रबल निमित्त। तो उन सबको भी नमस्कार कर लेते हैं, ठीक है। और फिर परम गुरुवे नमः, यानी जो पूर्ण गुरु है, यानी ऑल द सत्पुरुष जिनके योग बल से भी हमारा काम होता है। तुमने कृपाणु देव को नहीं देखा, लेकिन हम कहते हैं कि कृपाणु देव थे, उनका योग बल था, उनकी बातों में का ये रस है, तो तुम बिलीव करते हो ना। तो बस उन पूर्ण गुरुओं को भी नमस्कार और साक्षात प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमः। ऊपर के सब गुरु है, लेकिन जो साक्षात प्रत्यक्ष है वो तुम्हारे लिए क्या है? सद्गुरु। लिखा ना इसमें, देख लो, ऊपर के सबके लिए गुरु वर्ड है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है वो सद्गुरु है। भावार्थ क्या बनता है? इस श्लोक के माध्यम से जन्म जन्म में मिले गुरु तत्व के सानिध्य को आभार की अभिव्यक्ति करते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं। प्रत्यक्ष सदगुरु की गुरु चेतना को जब हम नमस्कार करते हैं तो सभी गुरुओं को नमस्कार होता है, चाहे वह गुरु जड़ रूप में हो या चेतन रूप में, संप्रदायों के आचार्य हो या कोई सत्पुरुष हो। परंतु वर्तमान सदगुरु के स्वरूप को समझकर जब हम नमस्कार करते हैं तो सभी को नमस्कार होता है। ये स्वरूप पता होना चाहिए। और मैं लगभग हर गुरु पूर्णिमा पर ये बात बोलती हूँ कि गुरु तत्व को नमस्कार करना है, तो मुझे भी नमस्कार करते हो तो मेरे माध्यम से उन सभी गुरुओं को नमस्कार पहुंच रहा है। मेरे इस फिजिकल फॉर्म को नमस्कार नहीं करना, मेरे भीतर जो चेतना है जिससे तुम्हारे जीवन में रूपांतरण आ रहा है, और वो चेतनाएं एक ही जैसी होती है, सारी की सारी चेतनाएँ एक जैसी होती है, यानी एक ही प्लेन पर होती है। तो जब तुम मेरे उस डायमेंशन को नमस्कार करते हो तो आपो आप उन सभी नोन अननोन गुरुओं को अपने आप नमस्कार हो जाता है। सो ये गुरु पूर्णिमा के दिन में हम हर साल मैसेज देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब तो आत्मसिद्धि। आगामी 7 गाथाएं प्रत्यक्ष सदगुरु को अपने प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति करती हुई गाथाएं हैं जो श्री आत्मसिद्धि में से ली गई है। पहली लाइन के जो दो अहो अहो है वो गुरु के लिए है, और दूसरी लाइन के जो दो अहो अहो है वो अपने लिए है। आश्चर्य कि अरे इस एक जीवन में ही अज्ञान और अहंकार दोनों चले गए, और ऊपर में गुरु के रूप के लिए है कि मेरे जैसे ही दिखते हो लेकिन फिर भी कितना बड़ा कार्य कर सकते हो। तो उपकार भाव और आदर भाव दोनों चीजें कितना बहुत ही ब्यूटीफुली ये लाइन को कंपाइल किया है।
क्या प्रभु चरण तुझे धरूं, आत्मा से सब ही वो तो तूने ही दिया, वर तू चरणाधीन।
इसका जब मैं विवेचन लिख रही थी अभी आत्मसिद्धि के शास्त्र में, तो मैंने इसमें एक मेजर पॉइंट ये लिखा कि जगत में जब हमें कोई कुछ देता है तो उसका ऋण स्वीकार करके उसे कुछ देने के लिए हम उसके हाथों में धरते हैं, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में हम उसके पैरों में धरते हैं। इसलिए यहाँ लिखा क्या प्रभु चरणों में धरो। संसारिक व्यवस्था ऐसी है कि हाथों में यू आर गिविंग द गिफ्ट, लेकिन यहाँ चरणों में धरना है। आत्मा से सब हीन, और वह जो आत्मा है वो तो आपने ही दिया है। मतलब देखा तो दुनिया में सब कुछ आत्मा से तो है ही नहीं। इनफैक्ट हम लोग व्यवहार में भी किसी ने हमें कुछ दिया है तो हम रिटर्न में 5 रुपये भी ज़्यादा उसको डाल के देंगे, ये एक व्यवहारिक नियम भी है। तो यहाँ पर भी तो यही होगा ना कि जो उन्होंने दिया उससे +1 एटलीस्ट करके दें हम। तो कहते यही मैक्सिमम है तो मैं +1 क्या करूं। तो फिर आगे इसलिए कहते हैं यह देहादि कि अब मैं वो +1 तो कर ही नहीं सकता, तो आई हैव टू रिटर्न बैक। तो मैं क्या कर सकता हूं?
यह देहादि आज से वरते प्रभु आदि, दास दास मैं दास हूं आप प्रभु का दी।
मैं समझाऊंगी तो तीनों दास समझा दूंगी अभी, कि पहला दास किसे डिपिक्ट करता है, दूसरा किसे, तीसरा किसे, बट देन वो आत्मसिद्धि के लिए है, रखते हैं।
जय जय गुरुदेव सहज। सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी अंतर्यामी भगवान इच्छामि कमा समड़ो वंदियो जावणे जियाए निस्सीही आए मथेण वंदामि।
अब इसके बाद हम लोग एक पाठ गाते हैं जय जय गुरुदेव। तो स्क्रॉल कर दो, एक एक वर्ड का मीनिंग है। दो बार जय बोलते हैं हम, जय जय, तो हमेशा ऐसा रहेगा। पहला जय गुरु तत्व के प्रति, दूसरा जय अपने कनेक्शन के लिए। दोनों चीज़ें बोलते हैं, जय यानी अमर, जय यानी संयोजन कनेक्शन, गुरुदेव सतगुरु प्रत्यक्ष गुरु की बात चल रही है, सहजात्म स्वरूप यानी जो आत्म स्वरूप में रमण कर रहे हैं, परम गुरु यानी जो पूर्ण गुरु है, शुद्ध चैतन्य स्वामी यानी जो शुद्ध चैतन्य के स्वामी है, मालिक है, अनुभवी है, अंतर्यामी यानी जो सबके हृदय में बसते हैं, भगवान यानी जो राग द्वेष अज्ञान रहित है। ये अभी तक उनकी सारे विशेषण बताएं, ठीक है, कि प्रत्यक्ष सद्गुरु कैसे हैं, कि असहजात्म स्वरूप है, परम गुरु है, शुद्ध चेतना के स्वामी है, अंतर्यामी है और वो भगवत स्वरूप हो गए। ये उनकी विशेषताएं बताई। होता है ना, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास भी जाएं और उनकी 4-5 डिग्रीज लगी हो आगे, सो ट्रस्ट हमारा मल्टीफोल्ड बढ़ जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी ये विशेषण सारे लगा रहे हैं कि आई ट्रस्ट इन यू। अभी तो देवंदन अब खत्म होने जा रहा है, सो नाउ शिष्य ये बता रहा है कि मेरा संपूर्ण भरोसा श्रद्धा आप में समर्पित है और इसलिए अब मैं आपकी साक्षी में आगे ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। अब ये जो आ रहा है इच्छामि क्षमा समणो, ये क्या है, ये प्रतिज्ञा है। इच्छामि यानी इच्छा करता हूँ, क्षमा समणो यानी हे क्षमा श्रमण, क्षमा की मूर्ति। मैं इच्छा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ क्षमा की मूर्ति के सामने। कौन है क्षमा की मूर्ति?
प्रत्यक्ष
सतगुरु। गुड, वंदी हूँ, आपको वंदन करता हूँ, जावण जियाए यानी यथाशक्ति अनुसार, निश्चय ही आए यानी पाप क्रिया का निषेध करता हूँ, मथेण यानी मस्तक झुकाकर, वंदामी यानी वंदन करता हूँ। पूरा भावार्थ क्या बनता है कि सद्गुरु की विशेषताएं देखने के बाद, भावार्थ नहीं लिखा मैंने इसमें, सद्गुरु की विशेषताएं देखने के बाद हम उनके सामने इच्छा करते हैं अपनी, कि हमारी अब क्या इच्छा है। डॉक्टर के पास जाकर हम बताएंगे ना हमारी क्या इच्छा है, तो हम इच्छा करते हैं कि हे क्षमा मूर्ति, हम आपको वंदन करते हैं और आपके सामने ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम यथाशक्ति अनुसार पाप क्रिया का निषेध करेंगे। डज इट मेक सेंस? हम यथाशक्ति अनुसार पाप क्रिया का निषेध करेंगे और इसलिए हम मस्तक झुकाकर आपको वंदन करते हैं। दो बार वंदन आया, वंदियु और वंदामी दोनों के अंदर। पहला वंदन उनकी दशा को देखकर था, क्षमा श्रमण, क्षमा समणो लिखा है ना, क्षमा श्रमण, क्षमा मूर्ति। और दूसरा वंदन इसलिए कि वंस आई एम गेटिंग इनटू दिस कमिटमेंट, इसके बाद मैं वापस आपको वंदन करता हूँ कि मेरी ये कमिटमेंट आपकी कृपा से पूरी हो। तो ये हम तीन बार गाते हैं, है ना, तीन बार बोलते हैं पूरा सिर झुकाकर। क्या भाव बन रहा है कि हम यथाशक्ति अपने पापों को कम करेंगे। दैट्स इट, बस इतना ही, बाकी तो सारे विशेषण है, ठीक है। गुरु के सामने हम अपने यथाशक्ति पापों का निषेध करते हैं, और कौन अपने पापों का निषेध करेगा? एग्जैक्टली, वेरी गुड, जिसने अवलोकन किया है, जिसने इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं किया कि किस पाप का निषेध करना है, तो वो क्या यहाँ पर प्रतिज्ञा लेगा, वो क्या इच्छा करेगा। कहते हैं गुरु के पास करी हुई प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होती है, गुरु के सामने धरी हुई इच्छा अवश्य पूरी होती है। मतलब उसमें भी पारमार्थिक इच्छा तो कहते हैं जरूर जरूर पूरी होगी, लेकिन इच्छा धरेगा कौन? जिसने अवलोकन किया है, देखा है कि मुझे इससे आज़ाद होना है। सो मच वैल्यू ऑफ इंट्रोस्पेक्शन।
और ये संयम कालीन देवंदन में दिया, सारे दिन हाँ
ट्रू ट्रू, पूरे दिन में इंट्रोस्पेक्शन किया होगा, इसलिए सायंकालीन देवंदन में इच्छा में क्षमा समणो पाठ डाला है, क्योंकि पूरे दिन में जो इंट्रोस्पेक्ट करेगा तो वही शाम तक आते आते उसको अपने पाप कूचेंगे, खटकेंगे और वो यहाँ पर भगवान को धरेगा। तो धरना, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि देववंदन शुरू करने से पहले आधा एक मिनट आँख बंद करके सोच लेना कि आज प्रभु को कौन सा पाठ, कौन सा हमें पाप पाप वृत्ति को धरना है। तो जब ये इच्छा में खमा समुड़ाए तो उस भाव के साथ धरना। नेक्स्ट, हाँ वो तो पहले, वो तो क्षमा, इसलिए ये तो ना, ये भक्त बड़ा चालाक होता है कि पहले ही उनको टाइटल पकड़ा ही देता है कि आप तो क्षमा मूर्ति हो भाई, मैं कुछ भी गलती करूँ आप तो मुझे माफी करोगे। हाँ उनको वो आईना दिखा देता है कि चाहे मैंने कितना भी गलत किया हो, यू प्लीज सी द मिरर दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एंग्री ऑन मी, दैट इज इट। आगे
सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी अंतर्यामी भगवान इच्छामि खमा समणो वंदे उजावणे जियाय निसिहियाय मथेण वंदामि।
गुरु को प्रणाम करने का कारण और वापस इच्छामि खमा समणो यहाँ पर भी बोलते हैं। लास्ट,
सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी अंतर्यामी भगवान इच्छामि खमा समणो वंदे उजावणे जियाय निस्सिहियाय मथेण वंदामि। नमोस्तु 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 शरणं 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 त्रिकाल शरणं भवो भव शरणं सद्गुरु शरणं सदा सर्वदा त्रिविध त्रिविध भाव वंदन हो, विनय वंदन हो, सम्यात्मक वंदन हो। ओम नमोस्तु, जय गुरुदेव, शांति। परम तारक, परम सज्जन, परम हेतु, परम दयापूर्ण, परम प्रेम पूर्ण, परम कृपाणु वाणी सुरसाज अति सुकुमार जीव दया प्रतिपाल कर्म शत्रु के काल माहणो माहणो शब्द करने वाले आपके चरण कमल में मेरा मस्तक, आपके चरण कमल मेरे हृदय कमल में अखंड पढ़ने संस्थापित रहे, संस्थापित रहे। सत्पुरुषों का सत्स्वरूप मेरे चित पृथ्वी के पट पर टंकोत्कीर्णवत सदा उदित जयवंत रहे, जयवंत रहे।
नमस्कार करते हैं तीन बार, तीन बार जो नमस्कार है वो विनय सूचक है। नमोस्तु 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 हमने तीन बार बोला ना, एक बार नहीं बोला, तो ये विनय का भाव है। जैसे कोई हमारे घर आया, आओ आओ आओ, ऐसे विनय होता है, अरे आइए आइए आइए, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तो कोई आया और आइए पधारो पधारो, तो ये विनय का सूचक होता है। तो इसलिए नमोस्तु भी तीन बार रखा है, नमस्कार तीन बार, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शरणम शरणम शरणम। अब ये शरणागति शिष्य की तरफ से, ये भी तीन बार, ये विनय का सूचक की बात नहीं, अभी किसकी है, निश्चय सूचक है कि मेरी शरणागति अटल है। तो वर्ड्स किस तरह से होने चाहिए, उनका अर्थ ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए। पहला वाला विनय है पर दूसरा वाला निश्चय सूचक है कि मेरी शरणागति अब अटल है। त्रिकाल शरणम, भूत वर्तमान भविष्य काल की शरणागति स्वीकार करते हैं, तीनों काल की। भवो भव शरणम, प्रत्येक भव में शरणागति स्वीकार करते हैं, करनी है, गुरु तत्व तो हर भव में चाहिए। सद्गुरु शरणम, सद्गुरु की ही शरणागति स्वीकार करते हैं। सदा सर्वदा यानी सदा यानी हमेशा, सर्वदा यानी हर परिस्थिति में हम शरणागति स्वीकार करते हैं। त्रिविध त्रिविध यानी विधिवत तीन बार भाव वंदन हो यानी भावपूर्वक नमस्कार, विनय वंदन हो यानी विनय पूर्वक नमस्कार। खाली भाव से नहीं चलेगा, साथ में हाथ जोड़ने चाहिए। तुमको हमारे भाव में है पर तुम्हारे हाथ में विनय की एक्शन ही नहीं है। जैसे कई बार होते हैं, कई लोग दूर से जैसे नमस्कार करते हैं, जय कृपाणु प्रभु, अरे तुम्हारे हाथ कहाँ गए? तो खाली ये जय कृपाणु प्रभु, ये भाव वंदन भी प्रॉपर नहीं है और विनय वंदन तो है ही नहीं। तो अगर तुम सद्गुरु को देख रहे हो तो प्रॉपर हाथ जुड़ के तुम्हारा मस्तक झुके तो ये विनय वंदन भी है। तो यहाँ पर ये सारी प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं कि नमस्कार तो इतना इतनी बार ऊपर बोला, लेकिन अब मेरी भाव विशुद्धि क्या चाहिए, तो ये प्रतिज्ञाएं हैं। समयात्मक वंदन हो यानी आत्म भाव से नमस्कार हो, समय यानी आत्मा, ओम नमोस्तु यानी नमस्कार करते हैं, जय गुरुदेव शांति, शांत स्वरूप गुरुदेव के साथ कनेक्शन रहे। गुरुदेव को वापस कहते हैं आपके साथ कनेक्शन रहे। कनेक्शन का क्या फायदा होता है? कोई भी चीज के साथ आप कनेक्ट करो तो फायदा क्या होता है? डाउनलोड शुरू हो जाते हैं। कनेक्ट करो, जैसे ही हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो डाउनलोड्स शुरू हो जाते हैं। प्लग को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी शुरू कर जाते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं जय गुरुदेव, शांत स्वरूप आप है, लेकिन आपके साथ में कनेक्शन क्यों कर रहा हूँ? तो छः वर्ड्स बोलते हैं आप। पहला ही उन्होंने लक्षण दिया जो आजकल मैं कई बार बताती हूँ कि गुरु की तारक शक्ति होती है, तो यहीं से उठाया हमने। तो गुरु की शक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति क्या है? तारक है। तारक का मतलब खींच सकती है तुम्हें, यानी तुम विभाव में जा रहे हो, तुम विचित्रता में जा रहे हो, तुम विभाव मतलब गलत तरफ जा रहे हो, और तुम गुरु का स्मरण भावपूर्वक, विनयपूर्वक, समयात्मक पूर्वक कर रहे हो तो गुरु तुम्हें अपने स्वभाव से खींचने की शक्ति रखता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्ञान तो बहुतों के पास होता है लेकिन तारक शक्ति सबके पास नहीं होती। तो तारक शक्ति हमेशा गुरु तत्व में ही प्रकट होती है। यहीं पर ये पहला कहाँ गया? हाँ, यहीं पर उन्होंने पहला लक्षण दिया, छह लक्षण दिए। दूसरा परम सज्जन, जो पूर्ण रूप से सत्य में मग्न है। तीसरा परम हेतु, पूर्ण रूप से उद्देश्य सन्मुख है, पर्पस ड्रिवन। गुरु कैसे हैं? खुद हमेशा पर्पस ड्रिवन है, तो तुम्हें भी हमेशा पर्पस ड्रिवन रखेंगे कि नहीं? दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द पर्पस कि चलो अच्छा अभी ये नहीं होता ना तो ये कर लो। नहीं, पर्पस तो यही है, ठीक है तुम नहीं चल पा रहे तुम्हारा प्रॉब्लम है, बट दे आर ऑलवेज वेरी मच पर्पस ड्रिवन पीपल। ये भी गुरु की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। हाँ, पर जाना तो वही है, पहुंचना वही है। वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द डेस्टिनेशन। परम दयापूर्ण, पूर्ण रूप से दया भाव के धारक है। परम प्रेमपूर्ण, पूर्ण रूप से प्रेम के धारक है। परम कृपालु, पूर्ण रूप से कृपा करने वाले हैं। ये सारे लक्षण हम अनुभव करते हैं। परम तारक, परम सज्जन, परम हेतु, परम दयाड़, परम कृपाल, और नहीं परम प्रेमपूर्ण वो रह गया है, परम प्रेमाड़ गुजराती में हम लोग बोलते हैं ना, इसलिए उसमें परम तारक, परम हेतु, परम सज्जन, परम प्रेमा, परम मयाड़, हाँ वहाँ पे मयाड़ बोलते हैं मयाड़, लेकिन यहाँ पे प्रेमपूर्ण कर दिया हमने हिंदी में उसे, परम कृपाल। आगे कहते हैं वाणी सुरसाज, माया मायाड़ू छे आपने कही है ना, मायाड़ू, माया का गुजराती में यही वर्ड होता है कि लविंग, बहुत लविंग है। तो यहाँ इसलिए जब मैंने हिंदी ट्रांसलेशन किया तो वो मायालू कर देंगे ना तो थोड़ा उसका नेगेटिव मीनिंग हो जाता है, इसलिए मैंने उसको प्रेमपूर्ण कर दिया। वाणी सुरसाज यानी जिनके वचन सुर और साज है, सुर यानी दिव्य है और साज यानी संगठित है, मतलब एक क्रम से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी कुछ भी बोल दिया, कभी कुछ भी बोल दिया, ये भी एक गुरु की क्वालिटी होती है। वाणी सुरसाज, सुर यानी दिव्य और साज यानी हारमोनियस, हारमोनियस। अति सुकुमार, अत्यंत कोमल है, संवेदनशील है। जीव दया प्रतिपाल यानी जीव मात्र की दया का पालन करते हैं, अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। कर्म शत्रु के काल, कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करते हैं, काल यानी नाश करते हैं। माहणो माहणो शब्द को करने वाले, हिंसा नहीं हिंसा नहीं, द्रव्य और भाव दो बार है ना, तो द्रव्य से भी यानी बाहर भी किसी की हिंसा मत करो और भीतर भी किसी की हिंसा मत करो। मैं कई बार बताती हूँ नॉन वायलेंस के, हार्मिंग, हर्टिंग, हेटिंग, ये सारे ही वायलेंस है। हार्मिंग सम्मान, हर्टिंग सम्मान, हेटिंग सम्मान, 3H ऑफ वायलेंस, ये कई बार पहले बता रखा है। तो ये बात यहाँ आती है कि वो बाहर से भी नहीं करते, इतने अवेयर हैं, और भीतर भी देर इज नो वायलेंस, किसी की हिंसा नहीं है। आपके चरण कमल में मेरा मस्तक, दिस इंडिकेट्स पूर्ण समर्पण का भाव। ये एक मुहावरा है, चरण कमल में मेरा मस्तक, हम थोड़ी कौन सा उनके चरण कमल में मस्तक रखने वाले हैं, बट इट इज मुहावरा, पूर्ण समर्पण का भाव, आपके चरण कमल मेरे हृदय कमल में, ये भी मुहावरा है, मुहावरा समझते हो ना, ये भी मुहावरा है कि मैं पूर्ण प्रतिष्ठा का भाव रखता हूँ, पूर्ण आप मेरे हृदय में पूरी तरह से है, आधा संसार आधे गुरु वो तो चलने ही नहीं वाला, अखंड पने संस्थापित रहे, संस्थापित रहे, अविचल भाव से स्थापित रहे, कौन प्रत्यक्ष सदगुरु, उनकी आज्ञा, वो तो आज बताया ना उनका मैसेज, उनके संघ की निष्ठा, सब चीजें संस्थापित रहे, दो बार है तो द्रव्य से भी भाव से भी, यानी फिजिकली भी मैं आपसे कनेक्टेड रहूं और अंदर मेंटली एंड इमोशनली भी मैं आपसे कनेक्टेड रहूं। सत्पुरुषों का सत्स्वरूप यानी सत्पुरुषों का शाश्वत आत्मस्वरूप, मेरे चित स्मृति के पट पर यानी मेरे गहरे स्मरण में, इन माय सबकॉन्शियस माइंड, टंकोत्कीर्णवत यानी टांका हुआ, अंकित किया हुआ, कोई चीज को टांक देंगे, सदा उदित जयवंत रहे, जयवंत रहे, सदा उदित यानी हमेशा उदयमान रहे, क्या उदयमान रखना है, सदगुरु का कनेक्शन, हमेशा उदयमान रहे, सदा उदित जयवंत रहे, जयवंत रहे यानी अमर भी रहे, हमारा रिश्ता अमर भी रहे और साथ में हमारा कनेक्शन भी हमेशा बना रहे। ये जयवंत वर्ड बड़ा प्यारा है क्योंकि उनकी भी बात हो रही है और अपनी भी बात हो रही है, इसलिए ये वर्ड जब भी आता है ना इस पर थोड़ा एम्फसाइज किया करो कि माई कनेक्शन रिमेन्स वेरी स्ट्रांग विथ यू। फिर आगे वापस 11th श्लोक की तरह, ओके, नाउ वी कम टू द फ्लो ऑफ देवंदन। पहला श्लोक, प्रथम नमस्कार, बोलते जाओ, किसने बनाया, दूसरा श्लोक कारण, पहले श्लोक में भी नमस्कार का कारण बताया था, क्या कारण था, वेरी गुड, तत्व लोचन दायकम, तत्व को समझने की दृष्टि, लोचन मतलब आंखें, दृष्टि थी। दूसरे श्लोक के अंदर नमस्कार का कारण, तीसरे में दूसरा नमस्कार है, आप ओके, टोटल चार नमस्कार है स्टार्टिंग में, दूसरा नमस्कार है गॉड, ईश्वरीय सत्ता को, कौन सा श्लोक है दिव्या, तीसरा श्लोक कौन सा है देवंदन का, दृष्टि, गुड, ओमकारम बिंदु, पता होना चाहिए अभी अभी तुमने किया है, कहाँ से ये लिया है, ओमकारम बिंदु संयुक्तम, शिव षडाक्षर, षडाक्षर बोलते हैं या षडाक्षर वॉट एवर, छः अक्षर का जो मंत्र है उसकी स्टार्टिंग का पहला मंत्र है ये। नेक्स्ट फोर्थ श्लोक है, किसको नमस्कार कर रहे हैं आप, थर्ड नमस्कार भगवत सत्ता, भगवत सत्ता यानी भगवान यानी लॉर्ड, तो थर्ड गॉड को था और फोर्थ श्लोक में लॉर्ड को नमस्कार करें। देखो ये भी एक विनय रखा है, पहले गॉड फिर लॉर्ड, अगर इन्हें नास्तिक दर्शन का आग्रह होता, क्योंकि ज्यादा साधना नास्तिक दर्शन से किए इन्होंने, लघुराज स्वामी, परम कृपाणु देव, वचनामृतों में भी हम देखते हैं कि इनकी साधना लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा नास्तिक दर्शन का है, लेकिन जब बात पूर्ण स्वरूप की आती है तो जैसे कि नहीं, पहले हमें ईश्वर को रखना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ उसमें से ही बाहर आया है। सो इन्होंने पहले ईश्वर को नमस्कार किया, फिर भगवत सत्ता को नमस्कार किया, फिर नमस्कार का कारण बताया, क्योंकि तुम लोग तो फिर उन्हें पता था कि नमस्कार झड़ क्रिया की तरह करने लगोगे, तो का कारण हमेशा याद रखना, तो नमस्कार का कारण बताया। नेक्स्ट सिक्स श्लोक में चौथा नमस्कार आया, प्रत्यक्ष सतगुरु को, तो टोटल चार कितने, कौन से नमस्कार आए हमारे पास, पहला दूसरा, तीसरा भगवान, चौथा, और इसमें कितने श्लोक निकल गए? छः, और सातवां भी, चलो हाँ नमस्कार तक छः है, लेकिन अभी कारण भी है। जो ये नमस्कार किया उसका परिणाम क्या है, ये सातवें श्लोक में आया। क्या है सातवां श्लोक, कोई रिकॉल कर सकता है देखे बिना? रिकॉल करो, रिकॉल करो। छठा क्या था? रमता राम वाला था, याद आ रहा है? वंदु रमता राम, यस, तीन भुवन चूड़ा रथ। देखो थोड़ा सा क्ल्यू दे दिया जाए तो कैसे आ जाता है ना। तो प्रत्यक्ष सदगुरु वाला श्लोक ही वो है, रमता राम याद रखना है। और हर बार तुम्हें तुम्हारे, इसलिए मैं इतना टीटी खेल रही हूँ तुम्हारे साथ कि तुम्हें रमता रमता, अब तुम क्या रमणता, आत्मरमणता तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने कहा टीटी खेल के रमणता तुम्हारे दिमाग में सेट करो। बहुत चीटिंग तो बहुत ही की, तो खेल तो खेल ही है ना। नमस्कार का परिणाम सेवंथ में दे दिया, तीन भुवन, और उसका परिणाम क्या था तुम्हें याद है? सब विधि बंध नशाए। परिणाम का फल ही है, मतलब तुम नमस्कार का फल ही है कि उनके पास इतनी विधियां हैं तुम्हारे बंध का नाश करने के लिए। कौन सा बंध कैसे नष्ट करना है, कौन सी कर्म सत्ता को कैसे हटाना है, हर तरह की विधि है उनके पास। तो इसलिए सब विधि बंध नशाए। तो नमस्कार का परिणाम वो था। फिर एट्थ एंड नाइन्थ के अंदर जिन परमात्मा अथवा सदगुरु के दर्शन का परिणाम, कौन से दो श्लोक थे ये? तब तो तुमने सारे पढ़ लिए लगते हैं आगे पीछे। दर्शनम देव देवस्य, और दर्शन के चार कौन कौन से रिजल्ट्स थे, किसी को याद है तो हाथ खड़ा करो। ये इसमें ही है श्लोक में, दर्शन के चार रिजल्ट्स क्या थे? यस, हाँ, एक मिनट, क्रम से। पार्थ ने पहला बोला कि दर्शन करने से हमारे में दिव्यता प्रकट होती है, गुड, पाप वृत्ति का नाश होता है। थर्ड, अच्छे अच्छे कुलों में जन्म लेते हैं। और फोर्थ, मोक्ष साधन। दर्शन पे नहीं रुकना, दर्शन शुड बी कंबाइंड विद टू मोर थिंग्स। क्या है वो? नेक्स्ट नाइन्थ श्लोक में ही है, दर्शनात तुरित ध्वंसी। दूसरा क्या करना है? वंदनात, वंदन करने से वांछित प्रदा। फिर तीसरा क्या करना है? पूजनात। तो दर्शन शुड ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय वंदन एंड पूजा। अब ये पूजा हमारे अध्यात्म का विषय चल रहा है, इसलिए हमेशा भाव पूजा होगी। और भाव पूजा का मतलब ये होता है कि पूज्य भाव रहे, उनके प्रति हमेशा आदर्श का भाव रहे, पूज्य का भाव रहे। तुम्हारे साथ चाहे वो टीटी खेल रहे हैं और 10 गेम हार चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आदर्श का भाव तुम्हारा बिल्कुल भी स्खलित नहीं होना चाहिए, कि वो आदर भाव, आदर्श भाव, ये नहीं तुम्हारा हिलना चाहिए। इसलिए कहा कि दर्शन हो जाए तो उसके तुरंत बाद वंदन और उसके तुरंत बाद पूजा, ये दोनों चीज़ें एक साथ, तीनों चीज़ें एक साथ होती है। फिर वी कम टू 10th एंड 11th। अभी 10th से गुरु गीता के श्लोक शुरू हो गए, अभी तक ऊपर वो वाले थे जैन शास्त्रों से संकलित थे, अब ये गुरु गीता कौन सा है? 10th और 11th, ब्रह्मानंदम परम सुखतम केवलम ज्ञानमूर्ति गगन सदृशम। गगन की तरह क्यों कहा उन्हें? दो क्वालिटीज लिखी थी मैंने, वाव, वेरी गुड, अलिप्त है और व्यापक है। हाँ, उनके लिए तालियां बजाओ एकदम इमीडिएट। ठीक है, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। अब ये श्लोक जो 10th और 11th संस्कृत में थे उसी को हिंदी में कर दिया, तो कौन सा श्लोक बन गया? 12th, प्रभु दर्शन सुख संपदा प्रभु दर्शन नवनीति प्रभु दर्शन से पाइए सकल मनोरथ सिद्धि। तो श्री सद्गुरु की चित्त की में चित्त की रमणता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ये 12th श्लोक, एक मिनट, कुछ मुझे गलती हुई नहीं, हाँ, इसलिए ये 11th का है पार्थ, हाँ 10 और 11, अच्छा, इसलिए वो दोनों उसी में ले लिए, संस्कृत और हिंदी दोनों उसी में लिए। तो 12th में, हाँ, इसलिए मुझे लगा रमणता वर्ड क्यों आया यहाँ पर, तो रमण द वर्ड है, इसलिए आनंद मानंद करम ये वाला श्लोक हम यहाँ पर देखते हैं। उनकी रमणता का स्वरूप कैसा होता है कि वो आनंद और आनंद में होते हैं, परम सुख में होते हैं। आनंद मानंद 11 है तो मेरी गलती कहाँ हो रही है। अच्छा एक मिनट रुको, 7th पद एक मिनट ऊपर करो। 7th है नमस्कार का परिणाम, ठीक है, सब विधि बंधन नशाय। 8th, अच्छा, दर्शनम देव देवस्य और प्रभु दर्शन को क्लब किया हुआ है। ओके, संस्कृत और हिंदी उसका है, दर्शन का ही तो बात है, ठीक है,
दर्शन का परिणाम।
हाँ हाँ, 8th और 9th, ठीक है ना, और 10th और 11th को क्लब किया है, गुड। ब्रह्मानंदम और आनंद कि वो उनकी रमणता कैसी है ये 11th में बताया है, ठीक है। 10th के अंदर बताया है सद्गुरु का स्वरूप कैसा है और 11th में बताया उनकी रमणता कैसी है, ये वी आर डन। उसके बाद श्रीमद् परब्रह्म, चित्त की रमणता का स्वरूप, ठीक है, उनकी रमणता का स्वरूप हमने 12th में देखा। 13th में, अब 13, 14, 15, 16, 17 ये 5 का गुच्छा अलग लय में चलता है हमारा एक, ठीक है। तो फर्स्ट 13 जो है उसके अंदर सद्गुरु की 3 प्रमुख कौन सी भूमिकाएं बताई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। 14 के अंदर सद्गुरु से प्राप्त 4 आधार कौन से हैं, ध्यानमूलम, गुरुमूर्ति, पूजामूलम, मंत्रमूलम, मोक्षमूलम, तो ये 4 आधार मिले थे ना, तो ये उनकी बात की है 14 में। अब ये सारे सद्गुरु से ही रिलेटेड है। 15th में सद्गुरु की निश्रा में शिष्य का अनुभव कैसा होता है, तो अखंड मंडलाकार उसको कनेक्शन का एक्सपीरियंस होता है, अखंड मंडलाकार की फीलिंग होती है, तो 15th में बता रहे हैं उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। उसका अज्ञान नष्ट हो गया तो 16th, अगेन एक मिनट, मेरी की गलती तो नहीं है ना, अज्ञान नाश, हाँ 16th में अज्ञान का नाश हो रहा है, तो 17th के अंदर उसके अंदर परमार्थ साधन प्रकट रहे हैं, ध्यान रूपी धूपम, मन रूपी पुष्पम, ये सारे साधन उसमें आए। अब जब ये सारे साधन आ गए तो ही वॉन्ट्स टू इंश्योर कि ये मुझे हर जन्म में मिले, क्योंकि उनको पता है कि आए किसके कारण है, सदगुरु के कारण। तो अब ये देव गुरु और धर्म का सानिध्य मुझे हर जन्म में मिले, तो उसके लिए 18th देवेशु देवोस्तु, ईश्वर से 3 प्रार्थनाएं करी। क्या क्या 3 चीज़ें मांगी है नेत्र, ईश्वर से 3 क्या क्या चीज़ें मांगी हमने, हाँ वाई यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, देव गुरु और धर्म, ये 3 हमने मांगी। और उसके बाद हमने पर अपर सभी गुरुओं को नमस्कार किया, प्रत्यक्ष परोक्ष सभी गुरुओं को नमस्कार किया, और उसके बाद 20-26 गाथाएं, सतगुरु के प्रति प्रेम समर्पण और क्षमापना भी तो थी ना, क्षमा न हम आपसे क्षमा मांगते हैं और हर पाप क्रिया को यथाशक्ति निषिद्ध करते हैं। उसके बाद श्री आत्मसिद्धि शास्त्र से ली है, और 27 तो वापस रेपिटेशन है, इसलिए उसको शायद मैंने लिखा नहीं है। दिस इज द एंटायर।